सकते हैं कि उनकी वाणी को गंधर ही समझ सकते हैं। लेकिन एक श्लोक आता है कि बिन अक्षर इच्छा रहे रुचिर दिव्य ध्वनि होए, सुर नर पशु समझे बिन सबे संशय रहे न कोई। तो क्या इसका अर्थ सभी लोग समझ सकते हैं? भवि भाषणवश जो के वसाए, ऐसा भी एक श्लोक आता और निज निज भाषा के अनुरूप सबको समझ में आ जाती है। तो दोनों बातें सही हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गंधर्व भगवान ही समझ पाते हैं, तो वहाँ पर ये अर्थ लेना कि भगवान की वाणी का जो गूढ़ अर्थ है वो तो गंधर्व के ही समझ में आता है, और दूसरी बात जो धारण करने की क्षमता है वो भी गंधर्व के ही होती है। जैसे कि अपन लोग प्रवचन सुनते हैं या कोई भी बात सुनते हैं तो अपने को समझ में तो आ जाती है, लेकिन जिस गहराई से वो बोला गया है उतनी गहराई तक अपन कहाँ पहुँच पाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि फिर घर जाते जाते तक आधी अधूरी बातें तो भूल ही जाती हैं, सब कुछ कहाँ याद रह पाता है। तो इस अपेक्षा से लिखा है कि समूह शरण में जो बैठा रहता है, पशु भी बैठा रहता, तो पशु को उसकी अपनी भाषा में समझ में आती है, यही तो समूह शरण का अतिशय है। अकेले गंधर्व के समझ में आवे और किसी के समझ में ना आवे तो फिर उस धर्म सभा का क्या मतलब हुआ। तो बात तो सबके समझ में आती है भगवान की। भगवान की ध्वनि अक्षरात्मक नहीं होती, भगवान तो ओंकार ध्वनि में ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह का सिस्टम रहता है देवों के द्वारा कि लोगों के कानों तक पहुँचते तक वो उनकी भाषा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमारी भाषा में भगवान बोल रहे हैं। तो दोनों बातें सही हैं। अब सुन तो लिया लेकिन उसे धारण करने की क्षमता हमारे पास नहीं, इसलिए कोई ऐसा चाहिए गणधर जो कि उसे धारण कर सके, बाद में भी एक्सप्लेन कर सके। तो भगवान की दिव्य ध्वनि तो फिर जाती है, उसमें जिसको जितना समझ में आता है समझ लिया। अब कोई प्रश्न उठा तो उस प्रश्न का समाधान कौन देगा? तो फिर उस प्रश्न का समाधान गणधर देंगे, क्योंकि वे वाणी को सुन करके कहते इतनी क्षमता होती है कि एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर वे पूरे द्वादशांग को रच करके और अपने भीतर फीड कर लेते, रख लेते। कोई कहीं से भी पूछ ले, एक जगह पर लिखा है कि गंधर भगवान को भी जब शंका हो जाती है तब फिर से दिव्य ध्वनि में उस चीज के क्लैरिफिकेशन किया जाता है, अन्यथा भगवान की वाणी तो गंधर को पूरी समझ में आ जाती है। इसलिए गंधर भी आवश्यक है और सबके समझ में आती है, ये भी एकदम सही है, दोनों चीजें सही।
इसमें ऐसा
राजा श्रीरंग ने पूछा,
भगवान ने जवाब नहीं दिया, गणधर ने जवाब दिया। वो कहा जाता भगवान ने जवाब दिया, क्योंकि गणधर और भगवान को उस समय एक ही कैडर में रखा जाता है। भगवान चुप है लेकिन गणधर डायरेक्ट डिसाइपल हैं, वो उनके परम शिष्य हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, उनके बाद तो उन्हीं का नंबर है। सारी रिद्धियां हैं उनके पास, 63 रिद्धियां 64 में से, एकमात्र केवल ज्ञान को छोड़ कर, बाकी गणधर बराबर के हैं। तो बराबर मतलब ये कि उनका भी मोक्ष उसी भाव से हो जाना है, गणधर वही होता जिसका मोक्ष उसी भाव से हो जाना है। मैं भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर थे और मजा ये था कि वो 11 के 11 ब्राह्मण थे, पक्के वेद वेदांग के पाठी थे और वे उनके गणधर बने, और भगवान स्वयं छत्री थे। तो ये बहुत उसमें कभी पढ़िएगा, गणधर का जो स्वरूप लिखा है बहुत विशेषताएं होती हैं, वैसा तो हो पाना बहुत पुण्य का काम है।
जो भगवान महावीर कहते वो पूरा धारण हो जाता है,
पूरा धारण, फिर बीज बुद्धि होती है, एक शब्द सुन लेने से उस शब्द से जितना भी आगम होगा वो सब उनके अंदर फीड हो जाएगा। जैसे आपने एक फ्लॉपी में आपने एक नंबर दे दिया कि ये नंबर, आपने वो नंबर दबाया और उसमें आपने 200 पेज अगर उस नंबर से फीड किए तो वो 200 पेज आपके सामने आकर के चले जाएंगे। ऐसे जो है उनके अंदर फीड हो जाता है वो सारा कुछ भगवान, इसलिए तो गणधर की जरूरत होती है। 66 दिन तक भगवान रुके रहे, दिव्य ध्वनि नहीं खिली केवल ज्ञान होने के बाद कि कोई तो आवे और जो उनके ही चरणों में दीक्षा ले वे तो दिव्य ध्वनि खिरे, और गणधर की योग्यता का होना चाहिए। तो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, किसके लिए खिरती, सब बैठे हुए थे लेकिन सब सुन करके चले जाएंगे, धारण कोई नहीं करेगा तो व्यर्थ चली जाएगी। तो जब गणधर आए और उन्होंने दीक्षा ली, उन्हीं का शिष्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के साथ किसी ने दीक्षा नहीं ली थी, वो अकेले दीक्षित होके गए। ऋषभ देव के साथ तो और भी थे, वृषभ सेन थे, तो तो उनको इंतजार करना नहीं पड़ा, उनके साथ ही में विहार कर रहे थे जब से दीक्षा ली थी, लेकिन इनके साथ में तो आने पर ही फिर दिक्कत होनी थी। संलेखना व्रत लेने के लिए क्या क्या व्रत लेना चाहिए पुरुष जन्म पाने के लिए? संलेखना अगर आपको लेनी है तो बहने लोग हैं तो वो आरिका के व्रत ले में, आरिका के व्रत न ले पावे तो दो प्रतिमाओं के व्रत तो लेना। व्रत प्रतिमा वही कहलाती है जब 12 व्रत लिए जाते हैं, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, तो वो व्रती कहलाता है। इतने व्रत लेकर के जो संलेखना पूर्वक स्मरण करेगा उसके लिए जो है उस भाव से मुक्ति मिल सकती है, पर्याय से मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो सामान्य रूप से कोई व्रती नहीं भी हो तब भी संलेखना लेवे तो सार्थक होती, ऐसा नहीं कि निरर्थक होती है, लेकिन जरा देर लगेगी। व्रती व्यक्ति लेगा तो उसको जरा परिणामों में निर्मलता ज्यादा रहेगी, व्रती नहीं होगा तो उसको उतनी नहीं रहेगी। प्रतिमाधारी के क्या क्या नियम हैं? ये तो अलग अलग प्रतिमाओं के अलग अलग नियम हैं, उनको देख लीजिएगा। बेटे ने जो है महाराज जी को आहार देते समय एक वर्ष के अन्न का रात्रि त्याग कर दिया, जोश में आकर के हाँ कर दी। उसको अभी ये भी नहीं मालूम कि अन्न में क्या क्या चीज़ आती है, फिर भी घर पर वो रोजाना दिन में खा रहा है, लेकिन जब कभी शादी वगैरह में जाता है वो गड़बड़ा जाता है, छोड़ नहीं पाता। आप इसका समाधान बताइएगा। इसलिए तो लेते समय जो है सावधानी रखना चाहिए कि नियम लेकर के तोड़ना तो अच्छा नहीं है, नियम नहीं लें ये बात जुदी है अपनी शक्ति विचार की, और फिर बच्चे हैं तो उनके लिए तो उसी हिसाब से सावधानी रखना चाहिए। कहीं जावें अपने घर के लिए ले लो उनको नियम कि अपने घर में ही रात्रि भोजन का, बाहर के लिए मत रखो, बाहर जो है गड़बड़ हो जाए, कौन सी चीज़ खाने की है, खाने की थी कि नहीं खाने की थी, जो दी वो खा ली, अब वो क्या जानेगा उतना समझदार नहीं। फिर भी 8 बरस का तो होगा, आहार दिया है तो 8 बरस का तो होगा, इसीलिए तो हम आहार के समय किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं कि भैया इस समय हम आपसे बातें नहीं कर पाएंगे, हम आपकी बातें नहीं पूछ पाएंगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कितनी शक्ति है, तो समय तो दे लो और पहले अपने मन में सोच लो कि देंगे आहार तो कुछ ना कुछ तो नियम हम लेंगे ही, ये तो कोई भी होगा वो तो सोचे बिना रहेगा नहीं, तो बाद में हमसे क्लियर कर लो कि हमने तो ये नियम ले लिया और आप बताओ ये ठीक है कि नहीं है, तो हम बता देंगे कि ऐसा नहीं है ऐसा ले लो ताकि तुमसे आसानी से लग जाएगा, तो ऐसा कर लेना चाहिए जोश में आकर के और एकदम जल्दी से उतावली नहीं कर सकते। व्रत क्या नहीं होते, 5 अणु व्रत होती, पहली में 5 अणु व्रत, दूसरी में 12 व्रत पूरे रहेंगे, फिर शिक्षा व्रत गुण व्रत भी आ जाएंगे, और इसमें आंशिक रूप से रहते हैं उसमें पूर्ण रूप से इतना रहेगा। 8 मूल गुण रहेंगे पहली प्रतिमा में, 8 मूल गुण, अवक्ष का त्याग, मर्यादा का, भोजन पानी कुएं का, सब बातें पहली प्रतिमा से शुरू। बस इतना ही है कि सामायिक का कोई वो नहीं रहेगा, सामायिक बढ़ जाएगी, बाकी सब आचरण वही रहेगा, क्योंकि उसका विचार करो अपन की पंचम गुण स्थान तो हो ही गया पहली प्रतिमा से। अब प्रत्याख्यान चली गई तो उसके उदय में जो है जो कषाय होती थी वो कम हो गई, तो व्रत तो उसके उसी क्षण से हो गए। अब वो जितने पाल पाएगा उतने पालेगा। जिस दिन हमारा ये प्रश्न था हम उस दिन नहीं आ पाए थे। जो लोग मजबूरी के कारण दूसरा विवाह इत्यादि कर लेते हैं वो आहार नहीं दे सकते क्या, ऐसा नियम है? नहीं, लोग पुरुषों के लिए तो कोई बात नहीं है, बहनों के लिए है इसका नियम कि दूसरी शादी नहीं करते, एक बार शादी हो गई तो फिर दूसरी शादी नहीं होती। पुरुष वर्ग में तो दो दो शादी क्या करते हैं, चार चार शादी तक करते हैं, तो वो अब हाँ ये बात अलग है कि आपने कहीं उसको मारपीट कर दी हो या उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया हो और आपने फिर दूसरी मर गई फिर दूसरी मैरिज करी है तो विचार करेंगे कि आपसे लेना है कि नहीं, क्योंकि आपके परिणाम कैसे रहे पहले वाले के साथ, तो फिर विचार करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि एकदम आप फ्री हैं उस सबके लिए, ये इसलिए है आहार की प्रक्रिया पर इसलिए कि जो व्यक्ति दे रहा है वो पवित्र मन से देवे, अन्यथा उसका दिया हुआ हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं होगा और उसके अपने जीवन के लिए कोई कार्यकारी नहीं होगा। सुबह जल्दी जब हमारी नींद खुल जाती है तो हम बिना नहाए रात्रि में सोए कपड़ों में सामायिक कर लेते हैं, सामायिक में तो कोई दिक्कत नहीं है बैठे बैठे, पर फिर भी हाथ मुंह धो करके करें तो बहुत अच्छा रहे, माला फेरते हैं अगर तो शुद्धि भाई मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, इतने सारे रखे हुए हैं ये सब, तो अब थोड़ा संभल के बोलूंगा, टेप हो जाती है चीज, ऐसे तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ इससे। हाँ मैं कई प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही सामान्य रूप से भेज दूँ। मैं चतुर्दशी और रविवार व्रत लेना चाहती हूँ आपके सानिध्य में, लेने की विधि आप पूछ लीजिएगा बाद में टाइम। रोज प्रश्न मंच में आते हैं, कुछ बातें कहना कि पैतृक मंदिर है, पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर में चढ़ाए गए पैसे उठा करके चीज खाते थे हम पहले, आज एहसास हुआ कि पाप लगेगा। अब वो तो जो लगना था वो तो लग ही गया, आपने अज्ञानतावश किया हो चाहे जानबूझ के किया हो। उनका कहना है कि मंदिर में हमारे वहीं पर मंदिर था तो उसमें पूजा अर्चना भाई पिताजी वगैरह करते थे, हम मंदिर में चढ़ाई हुई चीज़ें खा लेते थे। तो अब जब समझदारी आई तो लगता है कि हमें पाप तो नहीं लगेगा, तो वो तो अज्ञानतावश जो पाप लग गया है वो कमती भले ही लगेगा पर लग तो गया, क्या करें उस पाप कम हो जाए। आगे सावधानी रखें, आगे ऐसा ना करें, व्रत नियम संयम धारण कर ले। उसके एवज में हमने जो है अनजाने में कुछ कार्य नहीं बना तो कह दिया भगवान ये कार्य हो जावे तो सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। बाद में पता चला कि सिद्ध चक्र विधान क्या है, छोटा विधान नहीं है जिसे आसानी से करा सकें, सर्विस में हैं असमर्थ हैं, क्योंकि घर में आमदनी जो है विशेष नहीं है और घर के लोग धर्म में रुचि भी नहीं रखते। उपरोक्त बातों को सोच करके मैं प्रायश्चित चाहती हूँ। देखो ये भी इस तरह की मुश्किल आ जाती है, अपन ने कह दिया कि वो काम हो जाएगा तो करवा देंगे, अब काम तो हो गया और अपन नहीं करवा पाए तो ये अच्छा नहीं, इसलिए बोलने से पहले सावधानी रखें। इसके बारे में तो कोई प्रतिष्ठाचारी वगैरह से परामर्श कर ले कि हमने ऐसा बोल दिया था, कोई विधान हमसे करवा दो, शांति विधान वगैरह कुछ छोटा मोटा जितनी हमारी गुंजाइश है उससे मैं करवा दूँ। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि अब लाख रुपया खर्च करें कोई सिद्ध चक्र विधान, नहीं 100 रुपया में भी सिद्ध चक्र विधान होता, कौन बड़ी भारी चीज़ है। हाँ आप क्या सोच रहे हैं 100 रुपये में भी होता, हमारे वहीं पर हम जब गुना में थे तो हम चांदखेड़ी गए तो एक व्यक्ति साथ में चले गए, कहले आप रुको 8-8 दिन, हमने तो सिद्ध चक्र की सोची हम तो सिद्ध चक्र करेंगे दोनों जन, और कोई नहीं हमारा व्यवहार वहाँ से हो गया, हम निकल के आ गए 3 दिन, 8 दिन के बाद जो है सिद्ध चक्र बड़े शांति से, कहले कहते हम तो अपनी रोज द्रव्य ले गए सिद्ध चक्र को पाठ करो अपने दो ही जनों और कोई भीड़ भाड़ की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा 8 दिन में करके आनंद से चले आए, उसमें क्या कोई भाई बड़ा भारी पैसा थोड़ी लगना, अपनी द्रव्य चढ़ाना जैसे वे चढ़ाते हुए अर्घ, पहले दिन 8 चढ़ाए 16 चढ़ाए 32 चढ़ाए बस अर्घ चढ़ा के अपने आ गए। ये तो ये जो चौक पूरो जात है जो दिखावे को पूरो जात इतनो बड़ो कि हमने करो ना होते कहां से आवश्यकता का है, उमे इतने चौक पूर्वे की अपने अपने से भीतरे भीतरे कर लो। इसको ऐसा मत सोचिएगा पंडित जी से कह करके करवा लीजिएगा, जो आपने
ना भीड़ की जरूरत है ना गिनती पहाड़ी
नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं गिनती पहाड़ी की बिल्कुल नहीं, ना पैसे की आवश्यकता है, जिसके पास जो है क्षमता उसके हिसाब से करे इसमें कोई बात नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है टच नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मुझे मुश्किल में डालेंगे जो उनको टच नहीं कर रहा हूँ। आपको लिखने में पता नहीं कैसा लगता होगा लेकिन मुझे जवाब देने में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आदमी हूँ भगवान नहीं बना, तो मुझे सुख दुख सब व्याप्ता है, ऐसी बात नहीं है, आपकी पीड़ा मैं जान रहा हूँ। लेकिन
अरे भगवान भी कोई प्रश्न को टाल देते होंगे नहीं
गृहस्थ ये इन्होंने जो है पूछा है मेरे से कि मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछ रहे हैं, गृहस्थ जीवन में कौन सा भोजन पी था, गृहस्थ जीवन में बाल्यकाल में कौन सा खेल पसंद था, आप क्या फिल्म वगैरह भी देखते थे, हाँ सारी चीज़ें इन्होंने बना के लिए आए हैं, पूरा पूछ रहे हैं किस चीज़ से ज़्यादा लगाव था, क्या क्या पसंद था, इंटरव्यू जैसा है ये, किसी दोस्त या मोहल्ले में कभी लड़ाई झगड़ा भी करते थे कभी आपने, हाँ सारे क्वेश्चन, कभी आपने जो है अपने घर के सदस्यों से जिद की, मुनि बनने पर आपको डर नहीं लगा, घबराए नहीं, इस वक्त आपको कैसा लगा विस्तार से बताएं। नहीं ये प्रश्न का जवाब तो दे सकता हूँ कि मुझे कोई भय नहीं लगा, मैं कई बार सोचता हूँ क्योंकि कई लोगों ने कहा कि बहुत कठिन मार्ग है, खांडे की धार है, तलवार पे चलना है, ऐसा चलना है कि अगर इस पार से उस पार हो गए तो ताली बजना है और अगर चूक के नीचे गिर गए तो ताली बजना, दोनों स्थिति में ताली बजना, एक में व्यंग से बजना है और एक में आपकी तारीफ में बजना है और दोनों में समता भाव रखना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा कठिन है। और बाकी सारी क्रियाएं तो शरीर आश्रित हैं ये, लेकिन ये भावनात्मक है, एक घर गृहस्थी में रह करके तो चार ऊंची नीची बातें हो जा तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और पूरे सबकी आंखें लगी हुई हैं उनके बीच से अपनी चर्या करना है, और चार लोग चार अच्छी बातें भी कहेंगे उससे हर्षित नहीं होना है, चार बुरी बातें कहेंगे उससे दुखी नहीं होना है, निर्भय होकर के अपने मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, तो मुझे इसमें मुझे डर नहीं लगता। बस इतना जरूर है कि अभी बहुत पूरी तरह से समता जितनी आनी चाहिए उतनी समता तो नहीं आई, झूठ नहीं बोलूँगा, जितनी आनी चाहिए, सुख दुख सब में समान रूप से दोनों को नहीं ले पाता हूँ, पर हाँ निर्भय तो हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा किसी का हाथ। कौन सा जीवन ने पूछा कि अच्छा लगा, गृहस्थ या मुनि का? मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं लगा, मैंने जैसा वहां जिया वैसे ही यहां। अक्सर लोग नियम लेते हैं, मेरे साथ बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए इन प्रश्नों को टच नहीं कर रहा था और इसका जवाब देता हूँ, दूसरे चेंज करिएगा थोड़े से क्वेश्चन। अक्सर लोग नियम लेते हैं और जीवन भर निर्वाह भी करते हैं, लेकिन देखा गया है कि जब नियम लेने वाला व्यक्ति अस्वस्थ होता है, मरणासन्न होता है, तो घर वालों के द्वारा उसका नियम तोड़ दिया जाता है, कोई भी लिक्विड दवा इत्यादि पिला देते हैं या रात में दवा पिला देते हैं, ऐसी स्थिति में किसको दोष लगेगा, बीमार व्यक्ति को या कि घर के लोगों को? दोनों व्यक्तियों को अगर गौर से देखें तो दोनों को दोष नहीं लगता। अगर भावनात्मक दृष्टि से देखें, जिसने त्याग किया है वो व्यक्ति पीना नहीं चाह रहा है, और जो घर के लोग हैं वे उसे उसका व्रत भंग करने के लिए नहीं पिलाना चाह रहे हैं, ये ठीक हो जावे तो कल के दिन जो है हम प्रायश्चित करवा देंगे और फिर हम इसका स्वास्थ्य ठीक हो जावे, उसकी चिंता है। तो दोनों ने जो है गलत नहीं किया अगर गौर से देखें, पर फिर भी घर के लोग जो है थोड़ी सावधानी रखें कि अगर सामने वाला मना कर रहा है तो फिर उसके लिए नहीं है, जबरदस्ती नहीं दें, क्योंकि उसका लाभ नहीं होगा। किसी डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा कि पेशेंट को जबरदस्ती दवाई खिलाई जावे और उसका मन नहीं होवे तो क्या होगा, वो फायदा करेगी नहीं, उसके साइकोलॉजी तो उसकी पहले बन गई कि इस दवाई को खाने से कुछ नहीं होने वाला और ये मेरे को ठीक नहीं होगी, तो उसका असर उतना ज्यादा नहीं होगा। ऐसा ध्यान रख के अगर कोई व्रती व्यक्ति मना करता है बार बार तो अपन उससे बचें और उसको नहीं दें, और अगर देखें कि नहीं मान रहा है और थोड़े से देने से ठीक हो जाएगा तो दे देते हैं, बाद में फिर प्रायश्चित इत्यादि भी होता है, ऐसा नहीं है कि प्रायश्चित नहीं, तो फिर जीवन भर के लिए रह जाता है कि देखो दवाई ठीक से करवा देते तो शायद बच जाए। देखो एक ये भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगी, ऐसा नहीं एकदम कह सकते कि अब वो तो हमें नियम उनका था तो हमें तोड़ नहीं सकते थे और कैसा करें, तो ऐसा भी नहीं, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को या घर वाले को, दोनों को ही, बीमार व्यक्ति को भर मजबूर होकर, हाँ अगर घर वाले बीमार व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है और वे उसके व्रतों से जिंदगी भर परेशान रहे हैं कि कहाँ से इनने व्रत लिया और हम तो जिंदगी भर करते रहे, हम इनकी आखिरी समय तो मिटवा ही दें, अगर ऐसी भावना से मिटाने की भावना से दे रहे तो फिर तो आपको पूरा पाप लगने वाला है, लेकिन आपकी भावना ऐसी नहीं है, अगर पवित्र है, मजबूर होकर के व्यक्ति नियम तोड़ता है बाद में पश्चाताप भी करता, हाँ तो होता है कई बार मजबूरी में, बहनों के लिए क्या कभी कोई ऐसा आश्रय है जहाँ धर्म ध्यान किया जा सके? अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था लोगों ने की नहीं है, ना वृद्धों के लिए की है और ना बहनों के लिए की है, जहाँ वो निश्चिंत हो करके और पूरी जिंदगी जो है पराश्रित रहना पड़ता है कि यहाँ रहे तो पिता के आश्रित रहे, वहाँ रहे तो जिससे विवाह किया उसके आश्रित, और जिस दिन वो भी नहीं रहा तो उस दिन बेटे के आश्रित, अब क्या है, जिंदगी भर जो है आश्रित रहना पड़ता है, एक ऐसा भी आश्रय होना चाहिए जहाँ की वो अपना धर्म ध्यान पूर्वक रह सके। वृद्ध लोगों की भी यही स्थिति है, ना घर में उनको चैन है, घर से बाहर जाते तो चैन नहीं है, घर की याद आती है कि भैया चलो होते ही, फिर होते चलो तो फिर भी चार बातें सुनाओ तो फिर कहूँ चलो, अब ऐसे ही करते रहते हैं, फिर आ जाते, फिर कई लोगों को देखते हम, कई लोगों ने हमसे कहा वृद्धों ने कि आप कोई ऐसा करवा देवे जहाँ की हम शांति से धर्म ध्यान कर सकें, अपने हाथ से बना खा लेंगे और अपना धर्म ध्यान करेंगे एक जैसे। कोशिश आचार्य जी ने भी कहा है, पांच सात वृद्ध लोग जो है, क्योंकि अभी संघ में नहीं रख पाते हैं वृद्धों को, चलने में दिक्कत होती, तो कोशिश तो है कि ऐसा कोई खुल जावे उनको धर्म ध्यान करवाएं सुबह दोपहर शाम को, वो स्वाध्याय करें, बढ़िया से रहें, अपना वो करें। दिक्कत तो होती है, निभा नहीं पाते ना बेटे, निभा पाते हैं ना। ये इन्होंने कहा वो इनका काफी रिक्वेस्ट है, और ऐसे व्यक्ति का रिक्वेस्ट है कि उसको टाल भी नहीं पा रहा हूँ, इन्होंने मेरी पीछे भी ली है। उनका कहना है कि जीवन के अंत तक पवित्रता बनी रहे, ऐसी कोशिश करेंगे, आशीर्वाद दें और अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में एक बार फिर से बता दें, हम टेप कर लें, कुछ मित्रों को सुना करके उनके अंदर परिवर्तन लाने की क्या करिएगा। मैं ताल नहीं पा रहा हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुना चुका हूँ कई बार उस चीज़ को हमारे अपने जीवन में। आज जो है वो एकदम बढ़िया से मन जो है थोड़ा तेज हो गया है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं आज।
आज हम लोग थोड़ी देर तक बैठे नहीं सोई ऐसी बात।
मैंने कई बार इस चीज़ के बारे में जिक्र किया, मुझे और कोई चीज़ नहीं, आज के जो विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर अधिकांश विद्यार्थियों को देख करके जो है थोड़ा सा दुख होता है कि वे विद्या को आजीविका का साधन तो बनाते हैं। ठीक है, विद्या आजीविका का साधन ही बनती है, पढ़ लिख करके कोई जॉब मिल जाएगा, कोशिश पूरी यही रहती है, वो ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ लिखने के बाद जो है व्यक्ति के अंदर जो उसका अपना कल्चर है, जो उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी तरफ रुझान कम हो जाता, उसके अपने धर्म की तरफ रुझान कम हो जाता, और उसके भीतर एक पता नहीं इस तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लीजिएगा या कि अहंकार कह लीजिएगा, ऐसी क्या चीज़ आ जाती है कि वो बाकी सबको बहुत छोटा मानने लगता है। पढ़ लिख कर वो कोई पोस्ट पा लेता है तो फिर उसके अंदर से आत्मीयता धीरे धीरे निकल जाती है, उसके भीतर जो एक प्राणी मात्र के प्रति बहुत अच्छे प्रोफेसर भी जो थे, प्रोफेसर नहीं कहना चाहिए, बहुत अच्छी जो पढ़ाई थी, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती थी। एक समय था कि जब डॉक्टर को बहुत इज्जत मिलता था, भगवान के बराबर इज्जत मिलती थी, कि या तो भगवान के हाथ में है या कि डॉक्टर के हाथ में। और आज के समय में कुछ लोगों ने जो है उसको धंधा बना, तो वो पढ़ाई फिर बढ़िया नहीं रह गई, वो कमाई का साधन हो गई, जिससे हमें सेवा करना चाहिए थी, उससे हमने पैसा कमाना शुरू किया। इसी तरह और भी है, कोई व्यक्ति को ज्ञान है और वो पढ़ा रहा है तो उसके लिए भी उसको पैसा, ठीक है पैसा जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी, जितने में कि हम अपना आजीविका, अपना जीवन ठीक से चला सकें, लेकिन अधिक पैसा इकट्ठा करके दूसरे का शोषण करके और फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई का उपयोग करें तो वो ठीक है। और ये तो खैर है ही, प्रोफेशनल हो जाता व्यक्ति नहीं होना चाहिए मैं सोचता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये वो मुझे जो कहनी है वो ये कि उसके भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए, उसके भीतर तो विनय आनी चाहिए, और दूसरे लोग जो ज्ञानवान नहीं है उनके प्रति भी विनय आनी चाहिए, जिनसे हमने एक जगह लिखा हुआ है कि जिससे हमने एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया है उसके प्रति भी हमारे मन में विनय होनी चाहिए, एक अक्षर का भी ज्ञान। लेकिन वो चीज़ खत्म हो गई, गुरुजनों के प्रति जो अपन को पढ़ाते हैं उनके प्रति कोई मान सम्मान की भावना नहीं रही, तो ये अच्छा नहीं। इससे विद्या आती तो है लेकिन वो विद्या कार्यकारी नहीं होती। तो मेरे अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो उस समय लाइफ में हुई और मुझे हमेशा ध्यान रहती हैं कि ऐसे भी लोग हैं, एक माने जिनको अपन क्या कहें, अच्छे लोग हैं। आज भी हम लोग गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैंने शायद परसों ही इस बात की चर्चा करी थी कि गुरु पूर्णिमा का दिन था और हम लोग जो है सब ने मिल करके सोचा कि चलेंगे सर के पास, चलेंगे और उनको प्रणाम करेंगे और कुछ देंगे उनको, आज गुरु दक्षिणा देंगे। तो हम लोग गए और शुरुआत की क्या दे पाएंगे, रिटर्न देने का मन नहीं था, लेकिन विनय प्रकट करने की, तो थोड़ा सा कार्ड पर लिख करके उनको दे दिया। और उसके बाद जब पैर छूने के लिए आगे बढ़े तब जो है वे भी विगलित हो गए और उन्होंने कहा कि हमारे अपने पुत्र ने हमारे पैर कभी नहीं छुए, और तुम लोगों ने ये चीज कहां से? अब हमें पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पैसा लेकर के नहीं पढ़ा रहे, हम तो अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद से हमने देखा कि वो बहुत जिम्मेदारी से, कभी भी अपनी, उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, वो ग्वालियर आए थे और आप ताजुब करेंगे कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे दी थी कि मैं आज एब्सेंट रहूंगा, लेकिन वहां से मदर की लाश जो है जैसे ही रवाना हुई और वहां पूरा उनको करके वो, और उनको टाइम देखा उन्होंने कि 2:15, आप आश्चर्य करेंगे कि वो वहां से जो है चल करके और सीधा माने 10 बजे वो फ्री हो गए होंगे कितने बजे, और वो हमारे यहाँ पर 2:15 अटेंड कर क्लास लेने के लिए आ गए, जबकि उनकी वहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये साहब जो है आज एब्सेंट, और हम लोग फ्री थे, जाने लगे तो एकदम देखा कि अरे बाबू साहब तो आ गए, तो चुपचाप पढ़ा करके और उसके बाद बोले कि अब मुझे वापस जाना है। तब और लोगों ने बताया कि इनकी मदर एक्सपायर हो गई, वहां पर उनकी अभी डेड बॉडी रखी है, वो 4 बजे उठना है इस वजह से जो शाम को उठेगी, इसलिए अभी ये पीरियड लेके अब जा रहे हैं वहां पर। बताइएगा किस वजह से वो पीरियड लेने आ गए थे, वो कि हमारे स्टूडेंट हैं, एक क्लास मिस हो जाएगी तो इनका तो बहुत मुश्किल होगा, कब पढ़ाएंगे। ऐसे लोग भी, एक आपके सक्सेना साहब, वो तो उसके बाद भी, मतलब मैं जब यहाँ आ गया उस समय की बात आपको बताऊं कि क्या इम्पैक्ट रहता है स्टूडेंट और उसके बीच में, कितना बढ़िया प्यारा संबंध हो सकता है। तो 12 साल के बाद जब मैं वहीं सागर पहुंचा तो 92 में, तो उनको मालूम पड़ा कि आए हुए हैं, तो उनने अपने और स्टूडेंट से पता करके, और जैन स्टूडेंट थे तो उनसे पता करके कि क्या हम मिल सकते हैं, तो मैं कहा हाँ मिल सकते हैं, इसमें क्या बात है। तो मैं रुका हुआ था जहाँ वो आए, आकर के बैठे और काफ़ी देर तक चर्चा चलती रही, और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि अब वैसे स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं, अब हम लोगों की भी अपना नेचर चेंज करना पड़ा, हम तो क्लास में जाते हैं, पढ़ाना है पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना हो तो हम चले, ना हमारा कोई विशेष पढ़ाने का मन करता है। लेकिन एक टाइम था आप लोगों के टाइम में कि जब बहुत इंटरेस्ट से हम लोग पढ़ाते थे और स्टूडेंट भी बहुत इंटरेस्ट से सीखते थे उस चीज़ के लिए। ये सारी चर्चाएँ करने के बाद मुझे बोले कि मुझे कुछ बताइएगा मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि आप, मैं सबसे परिचय दे रहा था उस समय, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा था, मैं बता रहा था कि इन्होंने मुझे जो है 6 साल तक जो है पढ़ाया है, बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके और एमटेक 6 साल तक कंप्लीट, वो पेरेंटोलॉजी के माहिर थे उसमें। तो सारी बातें बाद में वो मेरे से कह रहे हैं कि बताइए क्या, मुझे बताइए क्या करना है। मैंने कहा कि मैं शाकाहार का प्रचार कर रहा हूँ लोगों को, उनको कुछ बुक्स भी दे दी शाकाहार की, उनने ली, और आप ताजुब करेंगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ गेट वहाँ है, तो उन्होंने मेरी तरफ पीठ नहीं करी और पीछे पीछे ऐसे धीरे धीरे निकल करके बाहर चले गए। मैं दंग रह गया कि वो सक्सेना उधर दक्षिण के, और कहाँ एक जैन साधु, उससे क्या लेना देना उसका। और आप आश्चर्य करेंगे कि 1 महीने हुआ और ठीक 1 महीने के बाद मुझे उस स्टूडेंट ने आके कहा कि सक्सेना साहब नहीं रहे। अब वो तो सारी चीज ठीक है, लेकिन बोले कि आप ये लेटर दिया है उनकी मिसेज ने आपके नाम, जिसमें लिखा हुआ था कि पता नहीं आखिरी समय क्यों इतना अच्छा सब होना था, हमने उनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भगवान को मानते नहीं देखा, ना किसी के सामने अगरबत्ती लगाते देखा, लेकिन मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। वो कहते थे हमारा एक स्टूडेंट है जो कि साधु बन गया, उसका एक फ़ोटो उनको मिल गया था, वो फ़ोटो और आचार्य श्री का फ़ोटो वो लगा करके महीने भर से आरती करते थे, 1 महीने पूरा मेरे पास आने के बाद कभी, फिर उसके बाद बोले मांस नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, शराब नहीं पी उनने 1 महीने से। मैं तो सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ 1 महीने से सब छोड़ दिया था, अच्छा मरण हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। उनके दोनों बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट, उनका बेटा उनकी बिटिया दोनों आए दूसरे दिन मुझे प्रणाम करने के लिए कि आप आशीर्वाद दीजिएगा, पापा ने तो इतनी अच्छे से आपके सानिध्य में और इतना प्राप्त किया, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हम जहाँ भी रहें और एक आदमी की तरह। तो एक नहीं तो क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है कि स्टूडेंट का, उससे क्या संबंध, क्या लेना देना, पढ़ाया चले गए, लेकिन 12 बरस के बाद भी और वही चीज़ उसके भीतर, उसमें क्या चीज़ थी, वो आत्मीय था। तो हमें आज स्टूडेंट से यही कहना है कि वो अपने जिनसे हमने सीखा है, जिनसे 2 अक्षर भी सीखे हैं, उनके प्रति अपनी भावना पवित्र रखें, उसी से ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, क्या करिएगा, पर ये बहुत संवेदनशील घटनाएं हैं, इसलिए मुझे हमेशा याद रह जाती हैं। अब कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें आदमी को इंसान बनाया जाए। कभी के हृदय में ऐसा विचार कैसे आया होगा? क्या वर्तमान में मजहब में कोई कमी है? कमी तो है ही। हम आदमी को सब सिखा रहे हैं, बहुत ज्ञानवान बना रहे हैं, हम बड़े बड़े पोथी हमारे पास हैं, हम अहिंसा की बढ़िया से चर्चा कर सकते हैं, हम एक लेक्चर दे सकते हैं, सारे धर्मों पर दे सकते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हमारा जीवन खोखला रहता है। हम दूसरे को अपने जीवन से कोई संदेश नहीं दे पाते हैं, ये हमारी कमी है। हम अपने स्क्रिप्ट से तो दे पाते हैं कि हमारे साथ से इनको पढ़ लीजिएगा, नहीं, हमारे अपने जीवन को पढ़ लीजिएगा, हम ये कहें कि हमें देख लीजिएगा, हमें तो कोई भी आ जाए सब सबसे हमें स्नेह है। प्राणी मात्र के प्रति जो हमारे धर्म में कहा गया है कि मैत्री भाव जगत में मेरा, वो चीज पारमार्थिक पुण्य का बन। और भी जो कार्य है, आपने दूसरे का परोपकार किया, अपने दूसरे की मदद करी, दूसरे की सेवा करी, जिसमें आपने ये विचार नहीं किया कि कौन है कैसा है, तो उसमें भी पुण्य का बंध होगा, लेकिन वो पुण्य जो है सांसारिक है। जैसे दान देते हैं तो उत्तम मध्यम जघन्य तीन प्रकार के पात्र का विचार करके दान देंगे तो वही दान जो है फलित होगा संसार से पार होने के लिए। और अगर करुणा करके किसी को सामान्य रूप से जो उसका पात्र नहीं भी है उसको दान देंगे तो वो करुणा दान तो कहलाएगा, पर उससे हमारे मोक्ष का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। ये ऐसा थोड़ा सा विभाजन करें तो पुण्य तो और भी कई चीजों से बंध होता, मेरा कहना ये है। और षड आवश्यक से जो पुण्य का अर्जन होता है वो पुण्य का अर्जन हमें धीरे धीरे संसार से पार ले जाने वाला। मानव समाज में ऐसा वर्ग जाति संप्रदाय व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो अपने अपने देवगुरु शास्त्र के सम्मुख ना झुकता। फिर ये दुनिया इतनी कषाय युक्त और तनाव युक्त क्यों है? क्या करें, जिसको कषाय करनी होती है वो इन्हीं को माध्यम बना लेती कषाय करने के। देखो तो संसार की दुनिया की और सब चीजों में कषाय की जा सकती थी, लेकिन जब व्यक्ति बहुत कषायवान होता है तो इन तीनों के माध्यम से हमारा मंदिर, हमारा हमारी जगह, हमारे देवगुरु शास्त्र में भी शास्त्रों को लेकर के झगड़ा है, गुरु को लेकर के झगड़ा है, देव को लेकर के, देव स्थान को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े शायद इन्हीं को लेकर के हैं, और बाकी चीजों को लेकर के उतने झगड़े नहीं है, उतनी कषाय नहीं है। तो क्या करें, इसीलिए तो कषाय युक्त है। अकेले देवगुरु शास्त्र के सम्मुख झुकने से कुछ नहीं होता भैया। हमने कई बार आपसे कहा कि हाथ जुड़ जाते हैं, हम नहीं जुड़ पाते तो हमारा हाथ जुड़ना व्यर्थ। सिर झुक जाता है, हम नहीं झुक पाते तो हमारा सिर झुकाना व्यर्थ हो जाता। हम चले आते हैं, मन कहीं और रखा रहता है, और हम यहाँ ढूंढने आते हैं, ऐप ढूंढने अगर आते हैं, राग द्वेष करने आते हैं कि जी महाराज जी के ज्यादा निकट हैं और क्यों निकट हैं, इनकी कोई गलती ऐसी बताओ महाराज जी को जैसे महाराज जी को इन पे से मन हट जावे और हमारी तरफ आ जाए। ये एक प्रक्रिया चलती, मैं तो निरंतर इस चीज को देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ। साथ साथ पीढ़ी उघेड़ के रख देंगे उस आदमी की अगर आपके पास निकट आया है। उसने भले ही कषाय छोड़ दी हो, उसने भले ही सप्त व्यसन का त्याग कर दिया हो, लेकिन उसको साबित कर देंगे कि व्यसनी आदमी है और आपके पास आता है। बड़ा बहुत मुश्किल है, कषाय हमें कहाँ तक गिरा देगी, कषाय हमें सप्तम नरक तक ले जाती है। ये कषाय ऐसी है जिसके भीतर जितनी ज्यादा होवे, वो चाहे कितनी धर्मात्मा होवे, कषाय जो है तो उसके लिए उस धर्म को सब नष्ट कर देती। देव गुरु शास्त्र के चरणों में अकेले झुकने से कुछ नहीं होगा भैया। उनके जैसे किसी ने मुझे लिख करके दिया था एक बार गुना में, वो पंक्तियां मुझे हमेशा याद रहती कि छू सका हूँ अब तक चरण आपके, छू सकूं आचरण आपका आशीष दो। अभी तक तो मैंने चरण आपके छुए हैं, अब आशीर्वाद दो कि आपका आचरण भी मैं छू सकूं। उसके भीतर कैसी ललक है, ऐसी ललक होनी चाहिए तो फिर वो चरण छूना जो है वो सार्थक हो जाता है। यही कमी रह जाती, इसलिए अपन कषाय युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो कोई टेंशन में नहीं होगा, उसकी कषाय जरूर से जरूर मंद होगी। मनुष्य का बुद्धिमान होना दुख का कारण है, क्या मेरा सोच सही है? हाँ, अगर बुद्धि जो है भावनाओं से प्रेरित नहीं है तब फिर वो पीड़ादायक। अगर बुद्धि अकेले कहना चाहिए, बुद्धि और भावना के बीच अगर कोई बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, तो बुद्धि उसी आदमी को खा लेगी। बुद्धि का काम ही है, बुद्धि बिल्कुल उस आदमी को तर्क दे करके उसकी बुरी चीज को भी सपोर्ट कर देती है बुद्धि। हम जो बुद्धिमान होते हैं वे बहुत अच्छे अच्छे बुरे काम करके और फिर तर्क दे देते हैं और अपने को संभाल लेते हैं। और जो सरल सच्चा होगा वो व्यक्ति से थोड़ा गलत काम हो जाएगा तो गिल्टी फील करेगा वो, और जो बुद्धिमान होगा गिल्टी फील नहीं करेगा वो। कोई अगर उसको कहेगा कि तुमने ऐसा गलत किया तो वो समझा देगा कि समझ क्या रखा तुमने, मुझे मालूम है। ऐसा, तो बुद्धि जो है अपने को अपना ही घात कर देती। अगर उसके साथ भावना नहीं तो बुद्धिमान होना दुखदायी नहीं है, बुद्धिमान होने के साथ भावनात्मक नहीं होना दुखदायी, ऐसा कह लीजिएगा इसको तो ज्यादा। धन से उम्र बुद्धि स्वास्थ्य शरीर को कुछ भी लाभ नहीं होता, बल्कि शत्रुता जलन बढ़ती है, फिर भी इतना राग धन से क्यों है। असल में जब किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, उसको मन में ये लगने लगता है कि देखने में भी आता है, मैं सुबह सुबह चला आ रहा था वहां से, तो मैं सोच रहा था इस चीज को कि क्या जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो धर्म नहीं कर सकता, ऐसा मेरे मन में प्रश्न आ रहा था और आपने ये प्रश्न यहाँ पर भी प्रश्न कर दिया। तो मुझे लगता है क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा धर्म से धन को जोड़ लिया है कि आदमी सोच ही नहीं पाता है। हमने जहां भी प्रायोरिटी दी है तो हमने धर्मात्मा को नहीं दी बल्कि धनवान को प्रायोरिटी दी। मंच पर आना है तो वही आएगा, धर्म के काम करेगा, विधान करेगा तो वही करेगा, जिसके पास पैसा है, पैसा है, फंक्शन करेगा तो वही करेगा। इतना देखता है व्यक्ति, और शादी करना है उधर तो स्टेटस बनाना पड़ेगा, बड़ा आदमी होगा तो उसके उसको अच्छी जगह शादी हो जाएगी, ये सब मेंटेन करने के लिए, मतलब उसको हर जगह लगता है कि धन की पूजा होती, मेरे पास धन होगा तो मैं हर जगह सक्सेस हूँ। ये जो मानसिकता बन गई है उसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि इनसे लाभ नहीं होते हुए भी सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे आज के समय में है ना कि खाने पीने की चीजें आ रही हैं, लेबल लगी हुई, अब उसमें कुछ भी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छी लग रही, पैकिंग बहुत सुंदर है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत सुंदर, तो आदमी स्वाद के लिए मर रहा है और उसके लिए लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा इसको नहीं देख रहा है वो। इसी तरह ये है कि वो देख रहा है कि धन से कुछ लाभ नहीं होता, एक टेंशन और क्रिएट हो जाता है, आपस में एक दूसरे से जलन हो जाती है, अहंकार आ जाता, लेकिन नहीं प्रतिष्ठा चाहिए। तो वो इस तरह की चीज, एक कल संस्मरण पढ़ा था गांधी जी का, तो उसमें जो विजया बहन उनकी सेवा में रहती थी गांधी जी की, तो उनके आश्रम में 3-4 ठो गरीब बच्चे भी आया करते थे, सिलाई कढ़ाई सीखा करते थे, तो वो अपनी रोटी वहीं खाते थे आश्रम में ही, तो अपनी अपनी रोटी सब लाते थे, वो खाने बैठते थे, तो गांधी जी ने एक दिन देख लिया चुपके से कि ये तो बेटे जो है ऐसे ही रूखी सूखी थोड़ी सी रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर रोटी खाते हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। विजया बहन से बोली कि अपने यहाँ, बोले वो गांधी जी के, क्यों कुछ छाछ वगैरह नहीं बचती क्या अपने यहाँ पर आश्रम में, तो बोले बचती तो है, तो इन बच्चों को दे दिया जाए, ये अपनी रोटी उसमें खाए, ठीक है उसमें क्या पैसा लगना है। तो 4 दिन के बाद बापू ने फिर से पूछा कि बहन तुमने उनको छांस दी क्या कि नहीं दी, बोले नहीं दी मैं भूल गई, बोले तू भूल कैसे सकती है, मेरा तो सारा काम बड़े मुस्तैदी से करती है, इसमें भूल तेरे से तो भूल नहीं हो सकती। तो वो घबराई, बोले बापू मैं वाकई भूल गई हूँ, बोले नहीं ये मत कर कि भूल गई, तो फिर क्या कारण है कि मैं 4 दिन से जो है दिया ही नहीं उनको, बोले ये तेरे अंदर जो एक चीज बनी हुई है ना कि जो गरीब शरीफ हैं उनके प्रति ज्यादा नहीं ध्यान देना, उनके प्रति जो लापरवाही है वो तेरे को भुला देती है कि उनके लिए कुछ करो, ये मेन कारण है, भूल नहीं गई उनके प्रति। अगर तेरे मन में मेरे जैसा कोई विचार होगा होता कि बापू की कोई कमी नहीं रहना चाहिए उनके काम में, ऐसा ही अगर तुम्हें गरीबों के प्रति उनको कोई कमी ना रह जाए ऐसा भाव होता, लापरवाही नहीं होती, तो भूल ही नहीं सकते थे उनके प्रति। जो हमारे मन में एक लापरवाही है, करे वो जाने, वे अपने कर्म भोग रहे हम का करें, ऐसा जो हमारे भीतर एक भाव है वो भाव हमें उनसे, इसी तरह का ये उसको प्रश्न को मैं यहाँ जोड़ना चाह रहा था कि ऐसे ही हमारे अंदर है कि धन के प्रति जो हमारी भावना बन गई है वो हम नहीं चाहते हुए भी उसको अर्जित करने के लिए आगे पीछे भागते हैं, जानते हैं कि दुख भी होगा फिर भी। कविता कोई सुना दीजिएगा, अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो सुना दीजिएगा, ये जो है किसी भैया जी ने लिखी है, अब वो मैं आधी नहीं पढ़ पाऊंगा, वो कविता की पहली लाइन से मुझे लग रहा है कि एक आध दो लाइन पढ़ूंगा फिर मेरा मन भर जाएगा, फिर मुश्किल। आप जो है कोई सुनाएंगे तो मैं फिर वो भी नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए इन्होंने लिखी हुई है, मैं उनको लग रहा है कि अब मैं जाऊंगा तो पीड़ा होगी, और सवाल ही नहीं होता कि नहीं हो तो थोड़ा बहुत तो हो गई। धर्मानुराग भी जो है बड़ी मुश्किल में डाल देता है, विषयानुराग तो है ही, विषयानुराग तो दुनिया का है ही, कोई विषय की सामग्री छूट जावे तो ठीक है, लेकिन धर्मानुराग भी मुश्किल में डाल। सूरज ने आके कहा, ये जो है मुझे इस समय डायरी नहीं है मेरे पास, तो नहीं तो सुनाता हूँ, टाइम आपका पूरा हो गया, याद मुझे है नहीं, एक आचार्य वाली ये याद है, वो देवता ये सुना है, बहुत सारी लिखी हैं जो इन्हें याद है, मैंने कई बार सुनाई, रिक्वेस्ट है कि कविताएं नहीं सुना दीजिएगा, रिकॉर्ड भी हो जाएंगे तब भी रिकॉर्ड करने तक की तरह। एक आज सुनाता हूँ जितना टाइम है, आचार्य जी को मैंने समर्पित की थी जो कविता, वैसे मैं सुना चुका हूँ वैसे भी, पर अब उसको दूसरे सुनाता हूँ। इसमें जहाँ मैं देवता कह रहा हूँ वहाँ पर आचार्य जी है मेरे दिमाग में, ये मान के चलिए। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो सांस बन मेरे हिये में आता रहा जाता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, मैं बंधा जिससे मुझे जो, मैं बंधा जिससे मुझे जो मुक्ति का संदेश न देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा, जो मूर्ति में कई रूप धरता, जो मूर्ति में कई रूप धरता पर अरूपी ही रहा वो देवता, जो दूर रहकर भी सदा से, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, मैं जागता या सो गया, मैं जागता या सो गया ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता, जो गति था मेरी नियति था, जो गति था मेरी नियति था ठीक मुझसा ही मुझे करता रहा वो देवता, जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वो देवता। बस 12:15 हो गया, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा हूँ। अरंक नाम वाली कविता के लिए भी लोगों ने लिखा है और भी कई चीज़ें हैं। अरंत नाम वाली कविता चाहे तो सुनाए जिस, एक क्वेश्चन और बीच में है कि जिस कार्य के लिए बोली ली हो अगर वो कार्य रद्द हो गया हो तो बोली के पैसे देना चाहिए कि नहीं, कार्यकर्ता तो सही ना हो तब भी क्या करना चाहिए? अगर आपने बोली ली है तो उस कार्य को भी देखें कि वो कार्य ठीक रूप से हो रहा कि नहीं, ये भी जरूरी है। पैसा ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ उसका मिसयूज ना, हाँ जहाँ उसका यूसेज प्रॉपर हो वहाँ दे दीजिएगा, आपको तो देना है। अगर जिस जगह आपने सोचा था कि इस जगह देंगे और वहाँ पर ठीक ठीक उसका उपयोग नहीं हो रहा आपको लग रहा है, तो ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहाँ की उसका उपयोग ठीक ठीक होगा, वहाँ दे दीजिएगा, आपको तो देना है, उसमें क्या। तो ऐसा चेंज किया जा सकता है, अगर आपको लगे कि मेरा पैसा मैंने ईमानदारी से कमाया है, गाड़ी कमाई है और ठीक ठीक उपयोग नहीं करेंगे तो जहाँ हो गए, सबसे अच्छा तो ये है भैया कि अपने हाथ से वहाँ पर कोई काम कर देना चाहिए। आपको कुछ देना है, आपको शास्त्र भेंट करना, पैसे मत दो, आप तो शास्त्र खरीद के लाओ और बढ़िया से उसमें रख दो, अलमारी रख दो कि ये शास्त्र की अलमारी होगी। आपको दग लिख रहा है कि यहाँ पर रंग रोगन बहुत जरूरी है, आप वहाँ से परमिशन ले लो कि मैं करवाऊंगा और जितने में होगा मैं पूरा करवा दूंगा। आप खड़े होकर के अपनी जिम्मेदारी से तब देखिएगा उसका मजा कैसा आता है, खुद अपने हाथ से करेंगे करवाएंगे तो भी अच्छा है, और जहाँ आवश्यक है कि भाई यहाँ पैसा देना और अच्छा उपयोग होता है तो भी दीजिएगा, दोनों चीज़ें। ये भी अच्छी है, इसमें मुझे पूरी याद नहीं जितनी याद आएगी। माना कि तुम में भगवान बनने की ताकत है, माना कि तुम में भगवान बनने की ताकत है, पर इस बात पे ताकड़ थे क्यों, वो तो चीटी नहीं है। माना कि तुम में भगवान बनने की ताकत है पर इस बात पे ताकड़ते क्यों हो, वो तो चीटी में भी है। सवाल भगवान कहने कहलवाने का नहीं, भगवान होने का है। सवाल भगवान कहने कहलवाने का नहीं, भगवान होने का है। इस बार थोड़ा सा अपने को ऊंचा तो उठाओ, इस बार थोड़ा सा अपने को ऊंचा तो उठाओ, ना सही भगवान इंसान तो हो जाओ। ये करते जो है बहुत पहले बैंक बहुत चलता ना कि हमारे अंदर भगवान है, लेकिन वो कैसे मिलेगा, जब तक हम एक ठीक आदमी की तरह से नहीं जिएंगे तब तक भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। ये मैंने तब लिखा था जब मैंने पहली बार मृत्यु मैंने किसी को जलते हुए देखा, कि मैं अपनी लाइफ में देखा नहीं, गढ़ा कोटा में जो जाते थे शौच के लिए तो वहीं पर मरघट था, तो वहां पर एक अर्थी ले जा करके रखी गई थी, तो मैं वहीं खड़े हो गया। मैंने कहा अब ये क्या क्या करते हैं, अपन ने कभी देखा ही नहीं, देखेंगे खड़े होके। तो वो ले गए, फिर उन्होंने सब आग वगैरह लगा करके और जला जलू करके, और थोड़ी देर तो दुखी हुए, फिर उसके बाद अपने अपने रास्ते पे चले गए। होते ही हुए संसार का काम है। इसको तो बड़े आसानी से लिखा जयनंद कुमार ने कि अभी जिनको अपना जिंदगी भर अपना मानते थे तो उनको फूंक फांक के लौटे हैं, अभी तक जिनको जिंदगी भर अपना मानते थे तो उनको फूंक फांक के लौटे हैं। मन तो किसी काम में नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें, अरे सुनो तो ये बच्चे सब भूखे हैं, चाय तो बना लो, कुछ थोड़ा सा नाश्ता भी निकाल लो, अब जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। ऐसा कह के उसकी छोटी सी अपन इतनी बड़ी घटना को ऐसे आसानी से नहीं, अगर ऐसा करे व्यक्ति तो झेल नहीं पाएगा, तो क्या मुश्किल हो जाएगी उसको, उसे तो ऐसे ही करना पड़ेगा। पर मैंने उसके वहां से आकर के जो कविता लिखी थी वो आपको बताता हूँ। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना, मुझे मौत में जीवन के लोग चुनते हैं ना फूल, मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, अभी खिला हूं अभी मुरझाना और अभी टूट कर गिर जाना। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, कल यहाँ आया था कौन कितना रहा इससे क्या, कल यहाँ आया था कौन कितना रहा इससे क्या, मुझे आज अभी लौट जाना है। मुझे तो मौत में जीवन के फूल चुनना है, मेरे जाने के बाद लोग आए और मेरी अर्थी संभालें कांधे बदलें, मेरे जाने के बाद लोग आए मेरी अर्थी संभालें कांधे बदलें, इससे पहले मुझे अपने को संभालना और बदल लेना है। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, मेरे जाने के एक प्रतीक था, मेरे जाने के बाद लोग आए मेरी राख उठाएं उसे कहीं फेंकें कहीं सिराएं, इससे पहले मुझे अपने अहंकार को फेंकना और अपने को अपने में डुबाना, इससे पहले मुझे अपने अहंकार को फेंकना और अपने को अपने में डुबाना है। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, सुनते हैं एक दिन जरूर आती है मौत, सुनते हैं एक दिन जरूर आती है मौत, पर अभी तो मौत के आने से पहले मुझे रोज रोज जीना और रोज रोज मरना है। मुझे मौत में जीवन के फूल चुनना है, ये भी बहुत पहले कविता लिखी है, और बाकी याद जो है नहीं आ रही है इसलिए नहीं सुना रहा हूँ। ये भी अच्छा, यही बात है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंता नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंता नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीड है, सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, आंख जब मुंडी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे,
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे,
दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं,
रहे भावना ऐसी
बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ,